अध्याय 58 भविष्यवक्ताओं के संप्रदाय। परमेश्वर स्वयं इज़राइल की शिक्षा को निर्देशित करता था। उसका दायित्व उनके धार्मिक सरोकारों तक सीमित नहीं था, जो भी उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता था वह ईश्वरीय देखरेख का विषय था और पवित्र व्यवस्था के दायरे में था। परमेश्वर ने इब्रियों को आज्ञा दी थी कि वे अपने बच्चों को उसके नियम सिखाए और उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर के व्यवहार से परिचित कराएं। यह प्रत्येक अभिभावक का एक विशेष कर्तव्य था, विशेष इसलिए क्योंकि इसे किसी भी अन्य कर्तव्य से बदला नहीं जा सकता था। अपरिचितों के होठों से निर्देश दिए जाने के बजाय माता और पिता के स्नेहयुक्त हृदयों की घटनाओं के साथ परमेश्वर से संबंधित विचारों को संबद्ध करना था। अपने लोगों के छुटकारे में परमेश्वर के महान कार्यों और आने वाले उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञाओं को इज़राइल के परिवारों में प्रायः दोहराया जाना था। चित्रों और प्रतीकों के प्रयोग ने दी हुई सीख या शिक्षा को स्मृति पट पर स्थिरता से अंकित कर दिया। यहोवा की उदारता के और आने वाले जीवन के महान सत्य ने युवा मन को प्रभावित किया। वह रहस्योद्घाटन के शब्दों और प्रकृति के दृश्यों में परमेश्वर को समान रूप से देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। आकाश के नक्षत्र, मैदानों के वृक्ष और पुष्प, ऊंचे ऊंचे पर्वत और कलकल करती नदी की धाराएं सभी सृष्टिकर्ता की बात करते थे। मिलाप वाले तंबू पर आराधना और बलि की पवित्र विधि और भविष्यद्वक्ताओं के कथन परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य थे। मूसा का गोशेन के साधारण झोंपड़ी नुमा घर में, शमूएल का हन्ना द्वारा, दाऊद का बेतलहेम के पहाड़ी निवास में और दासत्व के कारण अपने पूर्वजों के घर से अलग हो गए दानियेल का प्रशिक्षण भी ऐसा ही था। ऐसे ही प्रशिक्षण द्वारा बालक तिमुथियुस ने अपनी नानी लोइस और मां यूनिके के होठों से पवित्र लेख के सत्य को जाना। युवाओं के निर्देशन के लिए भविष्यद्वक्ताओं के संप्रदायों के संस्थान द्वारा आगे का प्रयोजन किया गया। यदि कोई युवा परमेश्वर के वचन की सच्चाई का गहन अध्ययन करने का इच्छुक था और स्वर्ग से बुद्धिमता पाना चाहता था, जिससे कि वह इज़राइल में शिक्षक बन सके, उसके लिए यह संप्रदाय खुले थे। भविष्यद्वक्ताओं के संप्रदाय शमूएल द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अवरोध के रूप में युवाओं की नैतिक व आध्यात्मिक समृद्धि के प्रयोजन के लिए और राष्ट्र के लिए अगुवों और सलाहकारों के तौर पर परमेश्वर के भय में कार्य करने वाले सुयोग्य पुरुषों को जुटाकर भविष्य की समृद्धि के लिए स्थापित किए गए। इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए शमूएल ने नवयुवकों की टोलियों को एकत्रित किया जो धार्मिक प्रवृत्ति के बुद्धिमान और अध्ययन परायण थे। इन्हें भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र कहा जाता था। जैसे जैसे उन्होंने परमेश्वर से संपर्क साधा और उसके कार्यों और उसके वचन का अध्ययन किया, उनकी स्वाभाविक प्रतिभाओं के साथ स्वर्ग से प्राप्त बुद्धिमत्ता जुड़ गई। ये गुरु या निर्देशक ईश्वरीय सत्य में केवल सुप्रवीण मनुष्य मात्र नहीं थे, वरन ये वह लोग थे जिन्हें परमेश्वर के साथ संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त था और जिन्हें पवित्र आत्मा का विशेष दान प्राप्त हुआ था। अपने ज्ञान और धार्मिकता के कारण उन्हें लोगों का आदर और विश्वास प्राप्त था। शमूएल के समय में ऐसे दो संप्रदाय थे, एक रामा में जो भविष्यद्वक्ताओं का घर था और दूसरा किर्यत्यारीम में जहां उस समय संदूक था। अन्य संप्रदाय बाद में स्थापित किए गए। इन संप्रदायों के शिष्य किसी तकनीकी व्यवसाय या खेतों में हल चलाकर अपने निजी परिश्रम द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इज़राइल में यह तुच्छ या अद्भुत नहीं माना जाता था। यथार्थ में बच्चों को उपयोगी श्रम की अज्ञानता में बड़े होने देने की अनुमति को अपराध माना जाता था। परमेश्वर के आदेशानुसार भले ही बच्चे को पवित्र कार्यों के लिए शिक्षित किया जाना हो, प्रत्येक को किसी न किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। कई धर्म के शिक्षक मजदूरी करके अपनी उपजीविका कमाते थे। प्रेरितों के समय में भी पौलुस और अकीला तंबू बनाकर आजीविका कमाते थे, लेकिन इसके कारण वे कम सम्मानीय नहीं थे। इन संप्रदायों में परमेश्वर की व्यवस्था और उसके साथ मूसा के निर्देश, पवित्र इतिहास, पवित्र संगीत और काव्य मुख्य विषय थे। निर्देशन का तरीका वर्तमान की आध्यात्म विद्या संबंधी संस्थाओं की शिक्षा से बहुत भिन्न था। वर्तमान की संस्थाओं से शिष्य प्रवेश के समय से भी बहुत कम धर्म संबंधी सत्य और परमेश्वर के बहुत कम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके स्नातक हो जाते हैं। प्राचीन काल के संप्रदायों में परमेश्वर की इच्छा और उसके प्रति मनुष्य के कर्तव्य को सीखना संपूर्ण अध्ययन का महान लक्ष्य होता था। पवित्र इतिहास के अभिलेखों में यहोवा के पदचापों के संकेत ढूंढे जाते थे। प्रतिरूपों द्वारा सामने लाए गए महान सत्य दृश्यमान किए जाते थे और विश्वास उस संपूर्ण व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य पर पकड़ पा लेता था, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिवा ले जाने को था। भक्ति की भावना को संजोया जाता था। न केवल शिष्यों को प्रार्थना का कर्तव्य सिखाया जाता था, वरन उन्हें ये भी सिखाया जाता था कि प्रार्थना किस तरह की जाए, परमेश्वर के आत्मा के उपदेश का कैसे पालन किया जाए और समझा जाए, परमेश्वर में विश्वास का अभ्यास कैसे किया जाए और सृष्टिकर्ता को कैसे संबोधित किया जाए। पवित्र बुद्धिजीवी परमेश्वर के निधिगृह से नई व पुरानी चीजें प्रकट करते थे और परमेश्वर का आत्मा भविष्यद्वाणी और भजनों में प्रदर्शित होता था। संगीत एक पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजाया जाता था, मन को उसमें लीन करना जो पवित्र, शिष्ट और उत्कृष्ट है, और हृदय में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और भक्ति को जागृत करना। कितना अंतर है संगीत की प्राचीन परंपरा और प्रयोग और उसमें जिसको संगीत वर्तमान में समर्पित है। कितने लोग इस प्रतिभा का प्रयोग स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर को महिमा पहुंचाएं। संगीत प्रेमी असावधान होकर संसार प्रेमियों के साथ मनोरंजन के उन समारोहों में सम्मिलित होता है जहां जाने के लिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को मना किया है। इस प्रकार वह जिसका सही प्रयोग उसे आशीष ठहराता सबसे सफल साधन बन जाता है, जिसके द्वारा शैतान मन को कर्तव्य से और सनातन विषयों से भटका देता है। संगीत स्वर्ग के प्रांगणों में परमेश्वर की आराधना का एक भाग होता है और हमें हमारे स्तुतिगान में जहां तक संभव है स्वर्गीय गायक मंडली की स्वर संगति अथवा समरसता के आसपास तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा में कंठ या वाणी का उचित प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। धार्मिक विधि के भाग के रूप में गायन आराधना में प्रार्थना के समान ही एक धर्मक्रिया है। सही अभिव्यक्ति के लिए हृदय में गीत की भावना का आभास होना चाहिए। कितना व्यापक अंतर है परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा शिक्षित संप्रदायों और शिक्षा की वर्तमान संस्थाओं में। कितनी कम है वे शिक्षण संस्थाएं जो जगत के रीति रिवाजों और सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। विवेकपूर्ण अनुशासन और उचित नियंत्रण का निंदनीय अभाव है। तथाकथित मसीही लोगों में परमेश्वर के वचन की विद्यमान अज्ञानता चौंकाने वाली है। धर्म और शिष्टाचार में शिक्षण का स्थान व्यर्थ की बातचीत और निरी भावुकता ने ले लिया है। परमेश्वर की करुणा और उसके न्याय का, पवित्रता, शोभा और अच्छे कर्मों के निर्धारित प्रतिफल का, पाप के घृणास्पद स्वभाव और उसके भयानक परिणामों की नियतता का युवाओं के मन पर प्रभाव नहीं डाला जाता। बुरी संगत में पड़कर वे अपराध, अनैतिकता और व्यभिचार के मार्ग पर चलने लगते हैं। इब्रियों के प्राचीन शिक्षालयों से सीखने के लिए कोई ऐसे सबक नहीं जो हमारे समय के शिक्षक सीख सकें और लाभ उठा सकें। जिसने मनुष्य की सृष्टि की उसी ने उसके शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए प्रबंध किया है। इसलिए शिक्षा की वास्तविक सफलता उस स्वामी भक्ति पर निर्भर करती है जिससे मनुष्य सृष्टिकर्ता की योजना को क्रियान्वित करते हैं। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की छवि को आत्मा में पुनः स्थापित करना है। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसने मनुष्य को उत्कृष्ट गुणों से संपन्न किया। उसका दिमाग सुसंतुलित था और उसके अस्तित्व की सभी शक्तियां सामंजस्यपूर्ण थीं। लेकिन पतन और उसके दुष्प्रभाव ने इन वरदानों को विकृत कर दिया है। पाप ने मनुष्य में परमेश्वर की छवि को दूषित और विरूपित कर दिया है। उसी छवि को पुनः स्थापित करने के लिए उद्धार की योजना तैयार की गई और मनुष्य को परख अवधि का जीवन प्रदान किया गया। मनुष्य को उसी सिद्धता में लाना जिसमें उसका सृजन किया गया था जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, उद्देश्य जो अन्य सभी उद्देश्यों का आधार है। माता पिता और शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि युवाओं की शिक्षा में वे ईश्वरीय प्रयोजन के साथ सहयोग करें और ऐसा करने में वे परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9। आत्मा, विवेक और देह की सभी विभिन्न योग्यताएं जो मनुष्य में होती है, वे परमेश्वर की देन है, जिनका प्रयोग इस प्रकार होना है कि वे उत्कृष्टता की उच्चतम अवस्था में पहुंचे। लेकिन यह एक स्वार्थी और अनन्य उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र, जिसकी समानता हमें प्राप्त होनी है, उदारता और प्रेम है। प्रत्येक योग्यता, प्रत्येक विशेषता जिससे परमेश्वर ने हमें संपन्न किया है, परमेश्वर की महिमा और हमारे सहवासियों के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाना है। और इस कार्य में सिद्धांत का सबसे पवित्र, सबसे शिष्ट और सुखदायी अभ्यास होता है। यदि इस सिद्धांत पर इसकी महत्ता के अनुसार ध्यान दिया जाता, तो शिक्षा की किसी किसी वर्तमान प्रणाली में सुधारवादी परिवर्तन आता। घमंड और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के बजाय अध्यापक अच्छाई और सत्य और सुंदरता के प्रति प्रेम और श्रेष्ठता की इच्छा को जागृत करने का प्रयत्न करते। शिष्य स्वयं में परमेश्वर के दिए सद्गुणों के विकास का प्रयास करते, अग्रगण्य होने के लिए नहीं, वरन सृष्टिकर्ता के उद्देश्य को पूरा करने और उसके स्वरूप अर्थात समानता को प्राप्त करने के लिए। निरे सांसारिक स्तर की ओर निर्देशित किए जाने या स्वयं के उत्कर्ष की अभिलाषा से प्रेरित होने के बजाय मन सृष्टिकर्ता को जानने के लिए और उसकी तरह बनने के लिए उसकी ओर निर्देशित होगा। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। चरित्र निर्माण जीवन का महान कार्य है और परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण वास्तविक शिक्षा का आधार है। इस ज्ञान को प्रदान करना, चरित्र को इसके अनुकूल ढालना अध्यापक के कार्य का लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। इसलिए भजन संहिता 119:172-104 में कहा गया है, तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं और तेरे उपदेशों के द्वारा मुझे समझ मिलती है। परमेश्वर ने स्वयं को अपने वचन और सृष्टि की रचनाओं में प्रकट किया है। हमें प्रेरणा के ग्रंथ और प्रकृति की पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर का परिचय या पहचान को प्राप्त करना है। बुद्धि का यह एक नियम है कि वह धीरे धीरे स्वयं को उन विषयों के अनुकूल कर लेता है जिन पर मनन करने को वह प्रशिक्षित किया जाता है। यदि दिमाग में केवल अति साधारण विषय हैं, तो वह बौना और क्षीण हो जाता है। यदि उसे कठिन समस्याओं से जूझने न दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात उसकी बढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। शिक्षा देने वाली शक्ति के तौर पर बाइबल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं। परमेश्वर के वचन में मन को उच्चतम अभिलाषा विचार करने के लिए विषय मिलते हैं। बाइबल मनुष्य के पास सबसे अधिक शिक्षाप्रद इतिहास है। यह सीधा सनातन सत्य के सोते से आया और एक पवित्र हाथ ने युगानुयुग इसकी पवित्रता को संरक्षित रखा है। यह उस अतीत को दीप्तिमान करता है जहां मानुषिक अनुसंधान व्यर्थ में प्रवेश करने का प्रयास करता है। परमेश्वर के वचन में हम उस सामर्थ्य को देखते हैं जिसने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को फैलाया। केवल यहीं पर हम अपने वंश का इतिहास पा सकते हैं, जो मनुष्य के पूर्वाग्रह या मनुष्य के घमंड से कलंकित नहीं हुआ। इसी में इस जगत के उन महापुरुषों की विजय, पराजय और संघर्षों का उल्लेख है। यहीं कर्तव्य और नियति की गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। दृश्य और अदृश्य के बीच का पर्दा उठता है और हम पाप के प्रथम प्रवेश से लेकर सत्य और धर्म की निर्णायक विजय तक अच्छाई और बुराई के विरोधी पक्षों के संघर्ष को देखते हैं, और यह सब परमेश्वर के चरित्र का प्रकाशन ही तो है। परमेश्वर के वचन में प्रस्तुत किए गए सत्य के श्रद्धायुक्त मनन में शिष्य के मन का संपर्क परमेश्वर के मन से होता है। ऐसा अध्ययन न केवल चरित्र को सिद्ध और उदात्त बनाएगा, वरन मानसिक शक्तियों को सबल और विकसित करेगा। बाइबल की शिक्षा का मनुष्य के इस जीवन से संबंधित हर चीज की समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। यह उन सिद्धांतों को उजागर करती है जो राष्ट्र की समृद्धि के लिए आधारशिला है। वे सिद्धांत जिनमें समाज का सुख निहित है और जो परमेश्वर की सुरक्षा है, वे सिद्धांत जिनके अभाव में कोई भी मनुष्य इस जीवन में उपयोगिता, प्रसन्नता और सम्मान नहीं पा सकता, और ना ही भावी अनश्वर जीवन को पाने की आशा कर सकता है। जीवन में ऐसा कोई पद नहीं, मानवीय अनुभव का कोई चरण नहीं, जिसके लिए बाइबल की शिक्षा द्वारा तैयारी की आवश्यकता नहीं हो। अध्ययन और पालन किए जाने पर परमेश्वर का वचन मानवीय धारणा की तुलना में संसार को अधिक दृढ़ और सक्रिय बुद्धि के धनी व्यक्ति प्रदान करेगा। वह ऐसे मनुष्य को उपलब्ध कराएगा जिनके चरित्र सुदृढ़ और सामर्थ्यवान है, जो सही निर्णय करता हो और जिसकी सोच पैनी हो, जो परमेश्वर के लिए गौरव और जगत के लिए आशीष का कारण है। विज्ञान के अध्ययन में भी हमें सृष्टिकर्ता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। शुद्ध विज्ञान इस अनात्मीय संसार में परमेश्वर की हस्तलिपि की व्याख्या है। विज्ञान अनुसंधान के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी बुद्धिमता के मात्र नए प्रमाण लाता है। सही समझे जाने पर प्रकृति की पुस्तक और लिखित वचन दोनों ही हमें परमेश्वर से परिचित कराते हैं, क्योंकि यह हमें उन विवेकपूर्ण और उदार नियमों के बारे में सिखाते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। शिष्य को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह सृष्टि की सभी रचनाओं में परमेश्वर को देखे। अध्यापकों को उस महान शिक्षक का उदाहरण अपनाना चाहिए, जिसने प्रकृति के सामान्य दृश्यों के उदाहरण से अपने उपदेशों को सरल बनाया और अपने श्रोताओं के मनों को प्रभावित किया। पत्तेधारी शाखाओं पर चहचहाती चिड़ियां, तराई के फूल, ऊंचे वृक्ष, फलवंत खेत, झूमता अन्न, बंजर भूमि, अपनी स्वर्णिम किरणों से आकाश को चमकाता हुआ डूबता सूरज, यह सब शिक्षा के साधन थे। मसीह सृष्टिकर्ता की दृश्य रचनाओं को स्वयं के द्वारा बोले गए जीवन के शब्दों से संबद्ध करता था, जिससे कि जब भी यह चीजें उसके सुनने वालों की आंखों के सामने आएं, तो उनके विचार सत्य के उन पाठों पर जाएं जिन्हें उसने इनसे संबद्ध किया था। ईश्वर की छाप जो प्रकाशित वाक्य के पृष्ठों में प्रकट है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फलवंत तराइयों और गहरे समुद्र पर दिखाई देती है। प्रकृति की रचनाएं मनुष्य से सृष्टिकर्ता के प्रेम के बारे में बात करती हैं। उसने हमें पृथ्वी और आकाश में असंख्य प्रतीकों द्वारा स्वयं उसके साथ जोड़ा है। जगत में केवल दुख और मुसीबत नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। यह प्रत्येक खिलती हुई कली पर, प्रत्येक फूल की पंखुड़ी पर, घास की प्रत्येक पत्ती पर लिखा हुआ है। हालांकि पाप के श्राप के कारण धरती कांटेदार झाड़ियां उत्पन्न करने लगी, लेकिन उन्हीं कांटेदार झाड़ियों पर गुलाब खिलते हैं और कांटों को गुलाब छुपा देते हैं। प्रकृति की सब रचनाएं हमारे परमेश्वर की पिता समान देखभाल और उसके बच्चों को आनंदित करने की उसकी इच्छा की साक्षी है। उसकी निषेधाज्ञाएं और समादेश उसके अधिकार का प्रदर्शन मात्र के लिए नियत नहीं है, वरन वो जो कुछ भी करता है अपने बच्चों की भलाई को ध्यान में रखकर करता है। वो उनसे ऐसा कुछ भी त्यागने की अपेक्षा नहीं करता जिसे बनाए रखने में उनका लाभ हो। समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित धारणा कि धर्म स्वास्थ्य या सुख के लिए हितकर नहीं है, सबसे हानिप्रद भ्रांति है। नीति वचन 1:23 में पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं। भजन संहिता 34:12-24 में लिखा है, तब कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। नीति वचन 4:22 में लिखा है, बुद्धिमानी की बातें जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण होती है। वास्तविक या सच्चा धर्म मनुष्य और परमेश्वर द्वारा दिए गए शारीरिक, मानसिक और नैतिक नियमों में सामंजस्य बैठाता है। ये आत्मसंयम, स्वेच्छा और आत्मनियंत्रण सिखाता है। धर्म मन को उदात्त बनाता है, स्वभाव को निर्मल करता है और विवेक को दोषमुक्त करता है। ये आत्मा को स्वर्ग की पवित्रता का भागीदार बनाता है। परमेश्वर के प्रेम में विश्वास और निष्प्रभाव कर देने वाली कृपा दृष्टि चिंता और व्याकुलता के बोझ को हल्का कर देते हैं। उच्चतम या न्यूनतम, सभी के हृदयों को यह संतोष और आनंद से परिपूर्ण कर देता है। धर्म प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्यप्रद है, ये जीवन को चिरायु करता है और इसकी सभी आशीषों में हमारे आनंद को बढ़ाता है। ये आत्मा के लिए आनंद का सदैव जलपूर्ण रहने वाला सोता खोल देता है। अच्छा होता यदि जिन्होंने मसीह को नहीं चुना वे यह समझ पाते कि जो वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं उससे कहीं अधिक उत्तम चीज परमेश्वर के पास है जो वो देना चाहता है। मनुष्य अपनी ही आत्मा को सबसे भारी चोट पहुंचाता है और उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय करता है। जब वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत सोचता और कार्य करता है, परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और वो अपने प्राणियों की भलाई के लिए योजना बनाता है। उसके द्वारा निषिद्ध पथ में थोड़ा सा भी वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। आज्ञा उल्लंघन का मार्ग विनाश और कष्ट की ओर जाता है, लेकिन बुद्धि के मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के है। नीति वचन 3:17। इब्रियों के शिक्षालयों में अभ्यास किए जाने वाले शारीरिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण को पढ़ाने से लाभ हो सकता है। ऐसे प्रशिक्षण के महत्व का मान नहीं रखा जाता। शरीर और मन में एक घनिष्ठ संबंध है और आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले नियमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक दृढ़ सुसंतुलित चरित्र के निर्माण के लिए मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का अभ्यास और विकास आवश्यक है। परमेश्वर द्वारा हमारे सुपुर्द किए गए इस अद्भुत जीवधारी अर्थात हमारे शरीर और उन नियमों के बारे में जिनके द्वारा हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं ज्ञान दिया गया है, और युवाओं के लिए इस अध्ययन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है।
और अब जैसे कि इज़राइल के समय में था, प्रत्येक युवा को व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों में निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्येक को हाथ के परिश्रम की किसी शाखा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी आजीविका कमा सके। ये केवल जीवन के परिवर्तनों के प्रति सुरक्षा के लिए ही नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर इसके प्रभाव के लिए भी आवश्यक है। यदि ये निश्चित भी हो कि किसी को अपने निर्वाह के लिए हस्तकर्म का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, फिर भी उसे श्रम करना सिखाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम के अभाव में कोई भी स्फूर्तिवान स्वास्थ्य और ठोस एवं निरोग शरीरावस्था नहीं पा सकता, और एक श्रेष्ठ चरित्र और स्वस्थ और सक्रिय बुद्धि के लिए सुव्यवस्थित श्रम का सीखना कम आवश्यक नहीं है। प्रत्येक शिष्य को दिन का कुछ भाग सक्रिय श्रम को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार उद्यम की आदतें बनेगी और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा, और युवा उन बुरे और नीचतापूर्ण अभ्यासों से बचे रहेंगे जो आलस्य की उपज होते हैं। और ये सब शिक्षा के मौलिक उद्देश्य के अनुकूल है, क्योंकि शुद्धता, निष्ठा और सक्रियता को प्रोत्साहित करने में हम सृष्टिकर्ता के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं। नौजवानों को उनकी सृष्टि का उद्देश्य समझ जाना चाहिए और परमेश्वर का आदर करना और अपने भाई बंधुओं को आशीषित करना सिखाया जाना चाहिए। स्वर्गीय परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया प्रेम, उत्कृष्ट नियति जिसके लिए इस जीवन का अनुशासन या प्रशिक्षण उन्हें तैयार कर रहा है, वो सम्मान और प्रतिष्ठा जिसके लिए उन्हें चुना गया परमेश्वर के पुत्र होने के लिए भी, ये सब उन्हें देखने दे और हजारों नौजवान उन स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों और तुच्छ अभिलाषाओं को जिन्होंने उन्हें जकड़ रखा था घृणा से देखने लगेंगे और उनसे मुंह फेर लेंगे। वे पाप से घृणा करना और दूर रहना सीख लेंगे, और ये केवल प्रतिफल की आशा या दंड के डर से नहीं, वरन उसमें निहित नीचता के आभास से, क्योंकि वैसा करना परमेश्वर द्वारा दी गई शक्तियों का अपमान होगा और परमेश्वर समान पुरुषत्व पर एक कलंक होगा। परमेश्वर नौजवानों को कम महत्वाकांक्षी होने की आज्ञा नहीं दे रहा है। चरित्र की वे विशेषताएं जो एक व्यक्ति को मनुष्यों के बीच सफल और सम्मानीय ठहराती हैं, अधिक पुरुषार्थ की तीव्र अभिलाषा, अदम्य इच्छा शक्ति, श्रम साध्य प्रयास, अथक आग्रह, इन विशेषताओं को कुचला नहीं जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह से मात्र स्वार्थपूर्ण और सांसारिक रुचियों से उन्हें उतने ऊंचे लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शित करना है जितना कि आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, और इस जीवन में प्रारंभ की हुई शिक्षा आने वाले जीवन में चलती रहेगी। दिन पर दिन परमेश्वर की अद्भुत रचनाएं जो सृष्टि की रचना उसे कायम रखने में उसकी बुद्धिमता और सामर्थ्य के प्रमाण है, उद्धार की योजना में उसके प्रेम और बुद्धिमता का अनंत रहस्य नए रूप में समझ आने लगेंगे। पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इस जीवन में भी हम उसकी उपस्थिति की झलक पा सकते हैं और स्वर्ग के साथ संपर्क के आनंद को चख सकते हैं, लेकिन इस आनंद और आशीष की संपूर्णता अब के बाद में होगी। केवल परमेश्वर ही उस महिमाई नियति को प्रकाशित कर सकता है जो मनुष्य परमेश्वर की समानता में पुनः स्थापित होकर प्राप्त कर सकता है।